ठीक है। यत्र का अर्थ क्या है? जहां योगेश्वर, जो योग के ईश्वर हैं, जिनको सभी योगों, जो सभी योगों के द्वारा जाने जाने चाहिए, या जैसे यहां पर बात बता रहे हैं योग के स्वामी कृष्ण, मतलब कृष्ण, जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं। यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे पार्थ जो कि धनुर्धारी हैं, गांडीवधारी हैं, वो रहते हैं। तत्र श्रीर विजयो, वहां पे श्री यानी लक्ष्मी, वहां पे विजय, भूति मतलब विभूति समझते हैं, विभूति शब्द सुने हैं, विभूति तो विभूति मतलब हर प्रकार की ऐश्वर्य। ध्रुवा, ध्रुवा मतलब ध्रुवा नीति, ध्रुवा मतलब अटल, नीति मतलब सदाचार या धर्म पर, धर्म का पालन ऐसा होगा, ऐसी मेरी मति है, मम मति, मति मेरी है। इससे पहले संजय जी ने अपना अनुभव सुनाया था भगवद गीता को सुन करके, और उसके बाद अब यहाँ पे वह अपना निर्णय दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र सोचे कि अगर मेरे बच्चे मेरे मतलब मेरे पुत्र जीत जाएंगे तो उसमें कोई संभावना नहीं है, जिस पक्ष में कृष्ण है, जिस पक्ष में भगवान अर्जुन है, वह है वो जीतना ही जीतना, ये दरवाजे को बंद कर दिया, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, डिस्ट्रैक्शन घंटी बजा के गया। देखो देखो क्या घंटी बजाने की जरूरत थी यहाँ पे, तो भक्त भी डिस्टर्ब करने में आनंद लेते, आज आखिरी क्लास से कम ये ठीक हो जाना चाहिए, पिछले साल रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए थे तो घबराहट हो रही है। जो भी है ठीक है, शुरू करते आगे। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, इसमें कोई संदेह नहीं होना। हाँ अर्जुन क्या, हाँ हाँ भगवान हर जगह हैं, तो भगवान हैं और भगवान के भक्त हैं, भक्त जहां रहते हैं वहां पे भगवान भी रहते हैं, जिस पक्ष में, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो पांडवों के पक्ष में हैं, तो उनकी ही जीत होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनका प्रश्न था ना शुरुआत में कि कुरुक्षेत्र में क्या किया, उनको लग रहा था मेरे बेटे जीतेंगे कि यार पांडव जीतेंगे ना क्या होगा, तो यहाँ पे बता रहे स्पष्ट रूप से कि भगवान कृष्ण जहाँ पे होते हैं और जहाँ के भक्त होते हैं वहाँ पे नीति होती है, वहाँ पे विजय होती है। समझ लेना चाहिए कि जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं, ऐसे भगवान सब जगह हैं ठीक है, लेकिन जहाँ भक्त होते हैं क्या बोलते हैं भगवान, यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि, जिस जगह भगवान के भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, वहां भगवान रहते हैं, वहां रहना वो पसंद करते हैं, भले वो सब जगह व्याप्त हो ठीक है। गीता भूषण टीका, और भगवान के सब जगह रहने से होता भी क्या है, परमात्मा गुरु में सब में रह रहे हैं, थोड़ा किसी को बुद्धि प्राप्त हो रही, किसी को विजय प्राप्त हो रही, क्योंकि ऐसा है इसलिए अपने पुत्रों की विजय की इच्छा को त्याग दो, लिंक है, क्योंकि कैसा है, ऐसा है कि भाई देखिए जहां कृष्ण है जहां पे अर्जुन है वहीं विजय होगी, तो इसलिए आप भूल जाइए कि आपके लड़के जीतेंगे, सब फेल होंगे। जिस स्थान में सभी जीवों के स्वामी उपस्थित हों, योगेश्वर के रूप में जिनका वर्णन हुआ था, कैसे वर्णन हुआ था, जिनका योग, जिनका संबंध ईश्वर के रूप में सभी जीवों से है, और एक दूसरा अर्थ क्या था, सभी योगों के स्वामी जो है, जिन सभी योगों के द्वारा जिनकी साक्षात्कार किए जाते हैं, आराधना की जाती है, या जो सभी योगों के फल देने वाले हैं, इस प्रकार के तीन अर्थ हमने लिए थे। अब जो अभी अगर बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे तो फिर क्लास फिर मत कहना कि 11 बजे तक होती, इसको पूरा कर लेते फिर उसके बाद। जो सभी अन्य जीवों के स्वरूप को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट और क्रियान्वित करते हैं वह उनका पालन करते हैं, इसका बस समझ में आ रही है। हम सभी लोगों की विभिन्न इच्छाएं हैं, हर जीव की विभिन्न इच्छाएं हैं, प्रलय हो जाता है, हमारा ये जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, ये मतलब जो प्रलय के समय रहा होगा शरीर, ये नहीं यही शरीर रहेगा, और उसके बाद उस जीव की इच्छा के अनुसार अगली सृष्टि में उसको उस शरीर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा काम है कि नहीं, हमको तो यह भी समझ में नहीं आता है कि जब हम प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं किसको क्या पसंद है, पता है आपको, क्या पता को कुछ ना बोले कि मुझे लड्डू चाहिए या मुझे ये चाहिए, हम यह भी नहीं जान सकते कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या इच्छा है। कभी कभी हम लोग वो वस्तु दे देते हैं उस व्यक्ति को जो हमें लगता है हमको अच्छा लगता हो, आपने देखा है कभी यानी हम दूसरों की इच्छा को बिल्कुल नहीं जान पाते, ये मैं खाली कहना चाह रहा हूं, सामने भी हो व्यक्ति तो, लेकिन भगवान सभी जीवों की इच्छा को जानते हैं और सभी के जीवों की इच्छा और कर्मानुसार उनको शरीर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यह तो प्रलय हो गया एकदम जो बड़ी वाली प्रलय, और इस जीवन में जो प्रलय होने वाली है वो जब मरते हैं तो कौन जीव कब मर रहा है, उसकी क्या इच्छा है, उसने क्या कर्म किया है, उसको अगला क्या जन्म प्राप्त होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारी भवन व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं, ये बात। और कैसे कर रहे हैं? इच्छा मात्र से। यह उनकी एक बहुत अद्भुत शक्ति है, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है, लेकिन और वह उनको प्रकट करे, फिर उसके बाद क्रियान्वित कर रहे हैं। मान लो कोई बहुत घोर स्वभाव का था तो उसको शरीर दिया, शरीर के बाद उसको वो स्वभाव भी एक्टिवेट कराना पड़ेगा ना, क्रोधीला स्वभाव या शांत स्वभाव या जो कुछ भी है, तो क्रियान्वित करने का समझ रहे हैं, शरीर दिया उसको स्वभाव दिया, फिर उसको प्रवर्तित कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, नियोजित कर रहे हैं, ईश्वर है सभी के। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा तो मुश्किल बात नहीं। जहां वसुदेव पुत्र कृष्ण हो, जो सारथी पर्यंत सहायताकारी हैं, और जहां प्रथा पुत्र अर्जुन हो, जिनकी मां प्रथा वसुदेव की बहन थी, जो नर के अवतार भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और गांडीवधारी हैं, अर्थात जिस धनुष को कभी काटा नहीं जा सकता अर्थात धनुर्धर, तो ऐसे ही स्थान में जहां श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के पक्ष में अधिष्ठित हो, वहां राजलक्ष्मी भी होंगी। फिर से समझते हैं क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। सारथी पर्यंत सहायताकारी, मतलब कृष्ण इतना जुटे हैं पांडवों की सहायता करने में कि वह सारथी बनने के लिए भी तैयार हैं। ये बात समझ में आई? यानी कृष्ण का संकल्प है, भगवान का संकल्प है कि ये लोग जीतें। आप जानते हैं भगवान का एक गुण है सत्य संकल्प, तो वो जीतेंगे ही। आप कहते हैं ना, तुम तो तुले हुए हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो इस चीज को करने के लिए, यही तो बोल रहे हैं। और आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अर्जुन को जीत दिलाने, विजय दिलाने के लिए सूर्य को ढक भी दिया था। आप जानते हो जयद्रथ को सूर्य भी ढक दिया था, अर्जुन का कहीं नुकसान ना हो जाए, जयद्रथ की गर्दन काटी और कहा कि इसको ऐसे मारो कि इसकी गर्दन जो है उसके पिताजी के गोद में जाके गिरे। कौन बुद्धि दे रहा है बताइए? अगर भगवान नहीं होते तो अर्जुन ही मर जाते, जयद्रथ को मारने के बाद भी अर्जुन मर जाते हैं कि नहीं? पग पग पे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। भीष्म देव से 5 बाण मांगने के लिए कौन बोला? सॉरी, दुर्योधन से 5 बाण मांगने के लिए कौन बोला? भगवान कृष्ण। अब एक एक लीला बताने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन छोटा एग्जांपल आपने पूछ लिया तो बोल देता हूँ कि भीष्म देव दुर्योधन को, दुर्योधन ने कहा आप लड़ नहीं रहे हैं, रोने लगा उनके पास जाकर के, मुझे तो, मैं तो आपके भरोसे युद्ध करने चला था और आप तो लड़ ही नहीं रहे हो, आप तो पांडवों का पक्ष ले रहे हो, भले हमारे तरफ युद्ध कर रहे हैं। तो बहुत क्रोध आया, कहते हैं अच्छा ये 5 बाण है, मैं संकल्प ले रहा हूं कि कल इसे 5 पांडवों को मार दूंगा। और आप जानते हो कि जब दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ा था तो अर्जुन ने बचाया था, तो दुर्योधन ने कहा कुछ वरदान चाहो, राज्य चाहो, सब दे दूंगा मैं। कहते नहीं नहीं, जब समय मिलेगा तो मैं करूंगा, मेरा कर्तव्य था आपको बचाने के लिए। तब भगवान को याद दिलाए कि जाओ, और दुर्योधन को विश्वास नहीं था भीष्म पितामह पे, तो कहते ऐसा करिए 5 बाण मेरे को दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ, कल सुबह आपको दूंगा मैं। तो फिर अर्जुन को भगवान बोले जाओ, जाओ मांग के लेके आओ। तो दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं वरदान चाहिए मेरे को। क्या चाहिए तुमको? राज्य चाहिए। कहते हैं नहीं, राज्य तो मैं लड़के ले लूंगा, मुझे वो 5 बाण चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान लगातार पांडवों की सहायता करे रहे। विजय कुटुंब, यानी कि कुटुंब बहुत सुंदर भागवत में आया है, विजय कुटुंब रतिर्मय अस्तु। विजय कुटुंब मतलब ये जो अर्जुन है, इनको विजय दिलाने के लिए उनका कुटुंब मना ली थी अपना। कुटुंब मतलब गलत कार्य करके भी इसका पोषण करना चाहिए। भगवान कुछ भी करके पांडवों को जिता दिलाने में क्या शब्द यूज करे, तुले हुए हैं, संकल्प लिए हुए हैं कि इनको जिताना ही है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जहां पे सारथी पर्यंत सहायताकारी, मतलब है भगवान लेकिन सारथी तक बनने के लिए तैयार है, तो फिर वहां पे जीत का क्या संचय करना। फिर प्रथा शब्द से क्या महत्वपूर्ण है? प्रथा है माता कुंती देवी का नाम, तो वसुदेव जी की बहन है, तो भगवान के बाप की बहन है ऐसे कहा जाए तो। सही गलत तो नहीं बोल रहे ना, जो भगवान तो है ही, भगवान के बाप की बहन का लड़का, अगर अब समझ में आ रहा है, भगवान के बाप की बहन का लड़का कोई आसान बात लगी तो नहीं होगा। और उसपे भी क्या है? नर के अवतार, आप जानते हो नर नारायण में से नर के अवतार अर्जुन जी हैं, साक्षात भगवान के पार्षद हैं, और उनका जो गांडीव धारी है, जानते हो आप गांडीव किसने दिया था? शिव जी ने दिया था। हाँ, शिव जी ने दिया था, तो कोई काट ही नहीं सकता था, युद्ध हरा ही नहीं सकता था। मुझे अर्जुन बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अर्जुन, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रिय लगते हैं, भीम भी बहुत अच्छे लगते हैं। कई मौका मिलेगा तो मिलेंगे उनसे, ऐसा नहीं बोल रहा, मिल सकते हैं। तो ऐसे स्थान में जहां भगवान कृष्ण है, नर के अवतार अर्जुन है, तो वहां पे निश्चित रूप से लक्ष्मी होंगी। ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, भगवान विष्णु को प्रणाम करता है, भगवान कृष्ण के विष्णु की छाती पे लक्ष्मी जी रहती हैं, तो वो एकदम बड़ा अनुकूल भाव से उस व्यक्ति को देखती है, तो उसके जीवन में संपन्नता अपने आप आती। देखे सुखे, देखे सुने ना भक्त भिखारी। अभी तो भक्त तो लक्ष्मी चाहते भी नहीं, वो तो केवल कृष्ण को चाहते, कृष्ण का अनुग्रह चाहते, लेकिन फिर भी वहां पे राजा लक्ष्मी होंगे। इसका अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे। भागवत में पढ़ोगे कि युधिष्ठिर महाराज ने 3 किए अश्वमेध यज्ञ, लेकिन उनकी कीर्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र से भी अधिक था। अश्वमेध यज्ञ किए, राजसी यज्ञ तो यही था, राजसी यज्ञ उन्होंने युद्ध के पहले किया था, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने युद्ध के बाद किया। ठीक है, विजय होगी अर्थात परम उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष समझते हैं ऊंचा उठना, उत्कर्ष समझते हैं उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब ऊपर प्रगति करना। और शत्रु का पराभव होगा अर्थात शत्रु का पराजय, शत्रु की पराजय होगी। विभूति का अर्थ है उत्तरोत्तर राज्य लक्ष्मी में विवर्धन होगा। विभूति तो मैंने को भूल ही दिया था, विभूति मतलब होता है ऐश्वर्य, तो यहाँ पे यही अर्थ है विभूति का। ध्रुव नीति का अर्थ है न्याय में प्रवृत्ति स्थायी होगी अर्थात स्थिर होगी, हर जगह होगी। ये समझ में आया, यानी कि पूरे राज्य में धर्म पालन होगा। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन कह रहे थे कि वर्ण संकर होंगे, क्योंकि जब ये युद्ध होगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने इतना सुंदर शासन किया कि कोई दूषित नहीं, कोई भी अधर्म के मार्ग पे जा ही नहीं सका। एक एक शासन हुआ भगवान श्री राम का और दूसरा शासन हुआ भगवान सॉरी युधिष्ठिर महाराज का। इस प्रकार से बोलते हैं ये बात है। ध्रुव नीति समझ में आ रही है, ध्रुव मतलब होता है अटल, तो हर व्यक्ति नीति धर्म के पथ पे रहेगा ऐसे स्थान। व्यक्ति को यह शंका नहीं करनी चाहिए कि यह शास्त्र युद्ध का पक्ष ले रहा है अर्थात युद्ध परक है। देखिए श्रील बलदेव विद्याभूषण जी आज से 500 साल पहले, मोटा मोटी 500 साल पहले ही बोल दिए, कितनी बड़ी भ्रांति है भारत में, भाई भगवद गीता घर में नहीं रखना, क्यों झगड़ा हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या हुआ, अच्छा खासा शांति में जा रहा था ना अर्जुन, और क्या हुआ देखो गीता सुन करके झगड़ा कर रहे ना उसमें। तो वाकई लोग गीता नहीं लेते, इस प्रकार से बोलते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि शास्त्र के उपदेश हैं मन मना भव मद भक्तो और सर्व धर्मान परित्यज्य इत्यादि। ये समझिए इस शास्त्र का उपदेश युद्ध क्यों नहीं है। मोहित इसका क्या उपदेश है शास्त्र का, युद्ध नहीं होता ठीक है, उपदेश क्या है आपका, मन कहीं और था इसलिए मैं पकड़ लिया। मन मना उपदेश क्या है, भगवान में मन लगा, अरे घर भूल जाओ टेंशन होता, आगे घर वापस आगे चिंता मत करो कि अपने घर में कितना दुख भोगा है, घबराइए मत अभी आप अच्छे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भक्तों के संग में यार हैप्पी। कभी कभी मुझे भी याद आ जाता है कि मैं नौकरी में नौकरी करते हुए कितना दुख भोग रहा था, फिर मैं अच्छा छोड़ो छोड़ो हो गया, 12 साल पहले की बात है, छोड़ छोड़ ठीक है। तो यानी कि भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, मन मना। अब यहीं से भागवत शुरू होगी, सत्यम परम धीमहि, भगवान अंत कर रहे हैं कहां से, मुझ में स्मरण करो, और वहां से भागवत शुरू होगी, सत्यम परम धीमहि, हम भगवान परम कृष्ण सत्परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जहां भागवत भगवद गीता समाप्त वहां से भागवत शुरू। मैं उत्साहित हो रहा हूँ भागवतों को बोलने के लिए, लेकिन दैट्स अ होल पॉइंट। भगवद गीता का कंक्लूजन क्या है, न कर्म योग न ध्यान योग कुछ नहीं, किसमें स्मरण करना है, कृष्ण के भक्ति योग, समझ लेना मेरी बात, वहीं से भागवत में शुरू हो रही है। तो ये भागवत गीता का कंक्लूजन है। तो फिर युद्ध करने के लिए भगवान क्यों बोल रहे हैं, देखिए यह स्पष्ट है कि नियत कर्म जो 4 वर्णों और आश्रमों के अनुसार बताए गए हैं वह हृदय के शुद्धिकरण के लिए हैं और समान जनता के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए। इसमें युद्ध करना भी एक नियत कर्म है क्षत्रिय के लिए। अब समझ में आया कि अर्जुन ने युद्ध क्यों किया, भाई उनका नियत कर्म है, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं भगवान कि सबको युद्ध ही करना है। वस्तुतः भगवान की क्या इच्छा थी, क्या है वो, युद्ध करो मेरा स्मरण करो, क्या श्लोक है गीता का, मां मनुस्मर युद्धस्व, यानी अनुस्मर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा युद्ध करना धर्म है। तो अगर आप कहेंगे वैश्य के लिए माम अनुस्मरण बिजनेस चा, ऐसा बोल सकते, मेरा स्मरण करते हुए बिजनेस करो, माम अनुस्मरण वटेवर पठन पाठन चा, ब्राह्मण का कार्य अलग हो सकता है, और मां मनुष्य परण परिचर्या चा यानी शूद्र परिचर्या कर रहा है लेकिन उसका स्मरण कृष्ण का होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नियत कर्म करने की आज्ञा भगवान दे रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते उनका नियत कर्म युद्ध करना था इसलिए युद्ध किया, ऐसा नहीं कि सबको तलवार निकालना है। Does it make sense? ये भगवद गीता की शिक्षा नहीं है। अभी तो भगवान तो यहाँ बोल रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को त्यागने से व्यक्ति का मन शांत होता है, झगड़ा करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं भगवान बिल्कुल नहीं बोल रहे, लेकिन क्योंकि धर्म युद्ध है और उन क्षत्रिय के रूप में उनका कर्तव्य है इस कारण से उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो मोहित प्रभु युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं भगवान की नहीं बोल रहे, नियत कर्म करने के लिए बोल रहे हैं ताकि समाज में आदर्श स्थापित हो, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य भगवान का क्या है, गीता का कहां मन होना चाहिए, भगवान। बहुत सारे उपाय हैं लेकिन उन सभी में भगवान को प्रपत्ति यानी भगवान की शरणागति, भगवान के दास के भाव में, यह भगवान विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। यही 18वें अध्याय का निष्कर्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान की शरणागति किस भाव में, भगवान मैंने अनादि काल से आपको भूलने का बहुत प्रयास किया है, मैं समझ गया हूं कि मैं आपका दास हूं, आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, ये भावना। इस भावना में व्यक्ति शरणागत हो तो चाहे कितने भी उसने पाप किए हो, भगवान को बहुत पसंद करता है कि वह अपनी मूल गलती, भगवान से विरुद्ध चलने वाली बात को छोड़ करके अब वह भगवान की शरण में आए। ये 18वें अध्याय का निष्कर्ष है, ये पूरे भगवद गीता का निष्कर्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि युद्ध करना निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि आपने देखा था अर्जुन क्या बोले थे कि मैं युद्ध करूंगा, यही बोले थे ना, नहीं नहीं 18वें अध्याय में क्या बोले थे, मेरा मोह चला गया है और मैं युद्ध करूंगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया चतः गत संदेह करिष्य वचनम तव, ये नहीं बोले मैं युद्ध करूंगा, मैं इसीलिए पूछा, वो खूब समझाया था क्लास में, युद्ध करूंगा ये नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप जो कहेंगे वो करूंगा, आप कहोगे युद्ध छोड़ दो तो युद्ध छोड़ दूंगा, आप कहो युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, ये भक्त की भावना। शरणागत भक्त का मतलब है वह वो कार्य करेगा जो कृष्ण के अनुकूल हो, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला। Does it make sense? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा तब होती, सेवा का एक मुख्य बात है यथा कालम यथा कामम, जैसे समय होता है और जैसा इच्छा होती है। अब एक भक्त हैं, वो बहुत लंबे लंबे टाइटल में लगे लगाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव महाराज आपकी कृपा, मैं उनको बोला आप केवल प्रभु जी बोलिए, लेकिन वो जुटे पड़े वो नहीं मान रहे, परम पूज्य गुरुदेव महाराज आपकी कृपा, ये आपको कोटि कोटि नमः, हमें कहीं सब करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो इच्छा आप बोलो अशुभ कृष्ण, तो यह भी नहीं बोल रहा हूं, सम्मान देना चाहिए टीचर को, लेकिन इतना जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करने की बात करना चाहिए, पता नहीं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कभी ना कभी तो सुनेंगे इसको, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप कहो कि आप ऐसे एक व्यक्ति बोला आप ही भगवान है, मैं वाकई बोलने लगा आप तो ही भगवान के स्वरूप है, मैंने कहा कुछ नहीं, हम केवल श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के तुच्छ दास हैं, बस उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरी इच्छा के अनुसार जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ, भगवान एक व्यक्ति हैं, जब उनकी इच्छा के अनुसार हम सेवा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, क्या इतनी बात समझ में नहीं आई, भगवान कैसे चाहते हैं हम कैसे सेवा करें, उनके नित्य दासत्व को प्राप्त करने के लिए उनकी शरणागति को स्वीकार करें, हमने भगवान आपके नित्य दास हैं, आप भगवान हो और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, ये बात, ये भगवत गीता का निष्कर्ष। युद्ध करना निष्कर्ष है नहीं, नियत कर्म करना निष्कर्ष है, हाँ नियत कर्म करना है लेकिन युद्ध करना निष्कर्ष नहीं कि सबको युद्ध ही करना है, मेक सेंस। भगवत गीता में परम सत्य कृष्ण जो सभी आध्यात्मिक गुणों के आलय हैं, आलय मतलब होता है घर स्थान, और जो माता यशोदा के स्तन पान करते हैं और जो पार्थ के सारथी बन गए हैं उनका ही गुणगान हुआ है, मतलब भगवद गीता में और किसी योग की को प्रमलगेट इंग्लिश में कहते हैं प्रमोट नहीं किया जा रहा है, केवल किसको बोल रहे हैं भक्ति योग। प्रभुपाद जी समझाए हैं कि जैसे सब्जी मार्केट में गीता का प्रवचन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, यही पूछा जाएगा आलू के भाव है भिंडी के भाव है, स्टॉक मार्केट में गीता का प्रवचन हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जो आपस में लोग बातें कर रहे हैं उनकी स्थिति को देख के समझ लेना चाहिए कि विषय क्या है, क्योंकि भगवान के भक्त सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद हो रहा है, तो संवाद किस संबंध में होगा, भगवान की भक्ति के संबंध में, भगवान के गुणगान के संबंध में, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ये आप लोगों को बड़ा स्पष्ट लगता है लेकिन बहुत से लोग को स्पष्ट नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कर्म योग का, हमें तो कर्म योग पसंद है, कहने का अर्थ ये है कि योग उड़ा देते खाली कर्म पसंद करते हैं। जो लोग बोलते हैं हमें कर्म योग पसंद है, कर्म योग पसंद है, तो कर्म रख लेते हैं और योग हटा देते हैं, कृष्ण से जोड़ना है कर्म को वो नहीं ध्यान रखते। तात्पर्य, भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। आज मैं देख ही रहा हूं कि पिछली बार की तरह बहुत कठिनाई आ रही है, आखिरी श्लोक को पूरा करने में, युद्ध समाप्त करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। भगवान कह रहे हैं गीता पूरी करने ही नहीं दूंगा तुमको मैं। चलिए ठीक है। उसे आशा थी कि विजय उसके, ये फोन नहीं चाहिए, उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, फ्लोट टूट जाता है, उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, किसे आशा थी, धृतराष्ट्र को, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। तो स्पष्ट समझ आ रहा है। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। एक बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि प्रथम अध्याय में दुर्योधन सबको देख रहा है, सारे योद्धाओं को देख रहा है, किसको नहीं देख रहा है, भगवान कृष्ण को। कह रहा है इधर भीम है, ये है, वो है, अभिमन्यु है, दत्तुम्न है, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि कृष्ण है, उस तरह तो क्यों रथ चलाएंगे, इसमें क्या है। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि सारे रथों को चलाने वाले वही है। समझ रहे ना मेरी बात। और यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, एकदम कृष्ण जैसे इसमें जूम पे स्पॉटलाइट होता है, ऐसे एकदम स्पॉटलाइट में आ गए कृष्ण। भगवद गीता की शुरुआत में कृष्ण स्पॉटलाइट में है, नहीं है, कोई नहीं देख रहा कृष्ण, इन द सेंस दुर्योधन नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब एकदम भगवान स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन वहां पे हैं, तो वह निश्चित रूप से वहां पे विजय प्राप्त होगी। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। अब इस थोड़ा समझना होगा वैराग्य मतलब भाई क्या कहा जाएगा, अरे क्षत्रिय होकर के तुम एक सारथी का काम कर रहे हो। भगवान युग एक तरह से राजकुमार थे ना, मतलब राजा नहीं बने थे लेकिन राजकुमार तो थे, राजकुमार होकर के तुम ड्राइवरी कर रहे हो। कोई अगर मान लीजिए ये कहे तो भगवान को उससे कोई मतलब नहीं, भगवान हर कार्य करने में पूरी तरह से जो कुछ भी करते हैं उसकी प्रसिद्धि बढ़ती ही है। यहाँ पे सारथी बने तो किस रूप से प्रसिद्ध हो गए, भक्त वात्सल्य। देखो भगवान कितने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि भक्त की, जिस भक्त ने भगवान के मिशन में अपने को समर्पित किया उसके लिए भगवान सारथी तक बन गए। इस संबंध महाराज समझा रहे थे कि जैसे गरुड़ जी हैं और कौवा है, तो कौवा अगर मेरू पर्वत, मेरू बहुत ऊंचा पर्वत है, मेरू समझ में आ रहा है ना, हिमालय, मेरू की चोटी पे कौवा बैठा हो और उसके तले पे, या तला समझ रहे, डाउन तलहटी में गरुड़ जी बैठे हो, तो गरुड़ जी कौवा जी से श्रेष्ठ है कि नहीं, कौवा जी गरुड़ जी से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो भगवान भले सारथी हो या रथी हो उसे कोई मतलब नहीं है, भगवान हमेशा भगवान ही रहते, उनको उनकी पोजीशन पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, वो सापेक्ष नहीं है कि कुछ लोग सम्मान करेंगे तो भगवान ऊंचे हो जाएंगे और सम्मान नहीं करेंगे तो नीचे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान को इस जगत की किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं है कि उनका सम्मान हो ही, या उनके क्या कहते हैं लोग क्या सोचेंगे और सारथी बन गए ना, उससे तो मतलब नहीं। या फिर जैसे भगवान रण भी छोड़ देते हैं, रण छोड़ तो उसमें भी वह है, उनको उनका गुणगान होता है, तो भगवान कुछ भी करते हैं तो भगवान का गुणगान ही होता है। जैसे भक्तों का नाम सुनते ही पार्थ सारथी, किसका नाम है, कृष्ण का नाम है, टेम्पो के ड्राइवर। अब किसी को टेम्पो के ड्राइवर या घोड़ा इक्का चलाने वाला तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जाएगी, लेकिन बोले पार्थ सारथी, केवल सारथी नहीं, पार्थ सारथी मतलब अपने भक्त के सारथी तक भगवान बनने के लिए तैयार। और आपको पता है क्यों, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान के भक्त युधिष्ठिर महाराज जो पूरे पांचों पांडव थे वह भगवान की सेवा में इसी प्रकार से शरणागत है। जो भी जैसे भी रखिए, जो भी सेवा में नियोजित कीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, जैसा भी आप करवाना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कृष्ण भी वैसा ही करने के लिए तैयार। और यहाँ पे आप जानते ही हो कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो भगवान सबके चरण धुलने के कार्य सेवा कर रहे थे। तो भगवान इस प्रकार से ही है। और ये जो दामोदर का महीना है उसी को सूचित करता है कि भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे जैसे सेवा जिस प्रकार से रखना चाहे भगवान को भक्त रख सकते हैं, इस प्रकार से प्रेम से ही रखते हैं। और आप इसे विचार करें तो आप सब जानते होंगे कि युद्ध के समय दाएं चलो बाएं चलो बोलने का मौका नहीं रहता था, तो अर्जुन अपने पांव को भगवान के गले के पीछे की तरफ भाग में रखते थे और उससे अपने क्या कह सकते हैं अंगूठों से और उंगली से वो उनको बताते थे कि दाएं जाना है बाएं जाना है। ये तो अचिंत है, कितना भगवान का प्रेम है भक्तों से। मान लीजिए आप थोड़ा विचार कीजिए, मान लीजिए आप प्रसाद में सर्विंग कर रहे हैं और पीछे कोई पांव लगा दे, बोले अच्छा इधर इधर रोटी बांटो, इधर खिचड़ी बांटो, आप उसे उड़ा देंगे कि नहीं? उड़ा देंगे ना। ये अचिंत भगवान का जो है वैराग्य है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, स्पष्ट है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। इस संबंध में श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे थे, कितना सुंदर है, 18 दिन से पहले युधिष्ठिर महाराज प्रैक्टिकली वन में घूम रहे थे और 18 दिन के अंदर भगवान ने उन्हें पूरे विश्व का राज्य दे दिया। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कृष्ण 18 दिन में ही तुम्हें पूरा विश्व दे सकते हैं, लेकिन तुम लोग करोगे क्या, सो जाओगे? अब तो विजय मिल गई पूरी, अब तो क्या करना है, नौकर मिल गए खाना बनाने के लिए, अब सोना है, क्या दिक्कत? तो कभी आप समझें कि हम लोग उतना प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर व्यक्तिगत बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि हमारी ही अयोग्यता है, नहीं तो भगवान तो कितने लोग सारे हमें भक्तों को हमारे सामने ला सकते हैं, इनको हम प्रचार कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इतने सारे लोग आएंगे तो हो सकता है हम ही थोड़ा सा अहंकार के फूल क्या कहते हैं फूल जाए, यस फूल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना व्यक्ति योग्य होता है उसके अनुसार भगवान उसको एम्पावर करते हैं। जैसे बृहद भागवत अमृत में हम पढ़ते हैं गोप कुमार ब्रह्मा जी बन जाते हैं और ब्रह्मा बनकर के सभी जीवों को शुद्ध भक्ति में नियोजित करते हैं। इसकी कल्पना कीजिए आप, ब्रह्मांड के सारे जीवों को शुद्ध भक्ति में नियोजित कर देते हैं, सारे जीव इतने शक्तिशाली थे। खैर जो भी है, लेकिन बात यह है कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार से दिया। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर स्मृति करेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पराया देश जो है वह युद्ध क्यों नहीं करते हैं? जानते हैं कि युद्ध के बाद बहुत बर्बादी होगी। ये चीज मैंने आज तक कभी सोची नहीं, इस पर पट में आज मैं देख रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं? युद्ध के बाद बर्बादी होती है और यही अर्जुन सोच रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे एकदम क्लियर करके, ना 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 ना, युद्ध के बाद समृद्धि और समृद्धि और बढ़ेगी। ये आप जानते हैं, जयति ते दिकम जन्म ना ब्रज, जब से भगवान कृष्ण ब्रज में अवतरित हुए तो ब्रज की जो समृद्धि थी वो और बढ़ गई थी। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध के बाद सब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ना अभी तो युद्ध के बाद और समृद्धि बढ़ेगी युधिष्ठिर महाराज के शासन में। इसको आप भागवत में पांचवें अध्याय में सीखेंगे प्रथम स्कंद, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। कठोर नीतिवादी का अर्थ है मतलब धर्मात्मा थे, धर्मपरायण थे। जब राजा धर्मपरायण होता है तो अपने आप सारे देवताओं का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है, सभी लोग धर्म का पालन करते हैं तो सुखी रहते हैं। जैसे भरत महाराज के राज्य में कोई मरना भी नहीं चाहता था तो मरता भी नहीं था, और यहां तक कि वह मुक्ति भी नहीं चाहते थे, सब शुद्ध भक्त हो गए थे। अब भागवत में पढ़ेंगे, बार बार प्रमोट कर रहा हूं भागवत। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया, हमने कब से अब तक असत्य भाषण नहीं किया? ये तो एक दिन भी निकल जाए कि असत्य भाषण ना होता हो, बड़ा मुश्किल है कि नहीं? और हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, असत्य भाषण। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवद गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में नहीं है, तो बस आपस में एक भक्त एक, एक मित्र को डिप्रेशन हो गया था, दूसरा मित्र को समझा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कितना सुंदर बात प्रभुपाद कर रहे हैं, कितने सारे मित्र आपस में बात करते हैं तो क्या वो सब शास्त्रीय रूप में स्वीकार किए जाते हैं? नहीं। एक जगह और बहुत सुंदर बात बताई कि वेद भगवान की सांस से प्रकट हुए हैं और भगवद गीता भगवान की मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए दोनों ही, इसलिए भगवद गीता वेद के ही समान है, जिसे श्रुति कहा जाता है, स्मृति ग्रंथ नहीं है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? ये वेद के ही समान पूरा प्रमाणिक है, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से निकला। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। यह भी हमने पढ़ा था टीका में। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है, मन मना भव मत भक्त। समझ में आया? युद्ध करना उद्देश्य नहीं है, भगवान का स्मरण करना ये मुख्य उद्देश्य है, भगवान का भक्त बनना ये मुख्य उद्देश्य है भगवद गीता का। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है, कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को 18वें कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। यह 18वें अध्याय का मत है। ये बात समझ में आई? दो बात प्रभुपाद कह रहे हैं जो हमने टीका में पढ़ा था, कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए से हृदय का शुद्धिकरण होता है, अच्छी बात है, लेकिन इन सब का पर्यवसान कंक्लूजन यह है कि व्यक्ति कृष्ण की शरणागत हो, मैं कृष्ण आपका हूं, मुझे आपकी सेवा करनी है, ये बात ठीक है, समझ में आ रहा है। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोसिद्धि है। ये तो समझ ही रहे, ज्ञान योग ध्यान योग से आत्मा की अनुभूति हो जाती है, लेकिन भगवान की अनुभूति भक्ति के द्वारा ही होती है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठान यानी कर्म, अनुष्ठानों यानी कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। ये लाइनें समझ में आ रही है? कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति आत्मा का अनुभव करने के लिए अयोग्य बन सकता है, उसके बाद वो ज्ञान योग करता है तो आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है, फिर वो ध्यान योग करता है तो परमात्मा तक पहुंचता है, भक्ति योग करता है और भक्ति योग तक पहुंचता है, तो इस प्रकार से क्रमशः प्रगति कर सकता है। और जो कर्मयोग है या कह सकते हैं आत्मा का जो ज्ञान है वह है, कर्मयोग नहीं कहना चाहिए, आत्मा का जो ज्ञान है वह गुह्य ज्ञान है। और उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? सामान्यतः जो विधि बता रहे हैं वह है अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करके या भगवान को समर्पित कर, कर्मयोग से करना चाहिए। फिर उसके बाद आत्मा की अनुभूति होती है, उसके बारे में व्याख्या किया गया था, फिर परमात्मा की अनुभूति के बारे में बात किया गया था, तो सब वह गुहितर ज्ञान है। लेकिन भगवत अनुभूति, भगवान की अनुभूति कैसे होती है? भक्ति के द्वारा। तो यह गुहितम ज्ञान है और यही 18वें अध्याय का सार है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरणागत होकर भगवान की अनुभूति कर सके। ठीक, तो इजी होगा। भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है और उस परम सत्य के बारे में आप भागवतम के प्रथम श्लोक में जानेंगे, सत्यम परम धीमहि। देखिए परम सत्य ले जा रहा है भगवान, प्रभुपाद ले जा रहे हैं परम सत्य की तरफ आपको, ठीक है कि नहीं? परम सत्य की अनुभूति तीन रूप में होती है, निर्गुण ब्रह्म भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, अंतर्यामी परमात्मा जगत को नियामक करने वाले तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक 1.1.1 सुनना है, क्योंकि उसमें परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा आपको और उसके द्वारा आप कृष्ण को जान लेंगे तो सभी सभी ज्ञान इसके अंश ही होंगे। यस्मिन विज्ञातो एतम सर्वमेव विज्ञातम भवति, जो कृष्ण को समझ लेता है वह सब कुछ समझ लेता है। इसके लिए मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कुछ अंश उसमें कठिन होगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिएगा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इसलिए परम सत्य को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपने नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीम नहीं, धामना स्वेन सदा हमेशा ही अपने नित्य, धामना का अर्थ है अपने अपने नित्य तेज अपने स्वरूप शक्ति में विद्यमान रहते हैं। ऑलरेडी मुंह से निकल रही था बात क्योंकि वो है आने वाला है, तो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो श्रेणी के होते हैं नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। प्रभुपाद पूरा समराइज कर रहे हैं। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। कौन से जीव? नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, ये सब असंख्य है, अनलिमिटेड है। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। 24 यानी कि इसके घटक हैं, अवयव हैं। अब इसकी व्याख्या भी मैं नहीं कर रहा हूँ, इस करने से कोई अभी लाभ भी नहीं, सब पहले कर चुके हैं। भूमि इत्यादि, भूमि अरपेय नलो वायु वैसे करके गिनेंगे तो 24 तत्व होते हैं। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है। अन्वय व्यतिरेक च, च शब्द काल को इंगित करेगा, श्लोक में देखेंगे। और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। समझ में आ रहा है ना कि भगवान की एक प्रधान है, प्रधान पर भगवान अपनी काल शक्ति का शोभ करते हैं, उससे गुण डिसबैलेंस होते हैं, फिर सृष्टि होती है। ये सब क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि जो हमारी जगत के प्रति दृष्टि है वो परिवर्तित हो जाए। हम अपने आप को अभी जगत का एक प्रोडक्ट मानते हैं, है कि नहीं? और धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये भगवान का प्रोडक्ट है। हम ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तु मेरी है, मैं जगत का हूं, ये है वो है, लेकिन हम जब भागवत सुनते हैं, सृष्टि के बारे में सुनते हैं, भगवान को समझते हैं, समझ में आता है कि ये तो ड्रामा है भाई, स्टेज है। स्टेज समझ रहे ना, स्टेज समझते हैं ना, उसमें हमारा कुछ समय के लिए रोल दिया गया है, उसी में, हाँ मंच 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 मंच, और उसी में हमको इतना अभिनिविष्ट हो गए हैं कि सोचते हैं कि बस यही रोल अपना को अपनाना या रोल को अदा करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? लेकिन वास्तविक व्यक्ति क्या समझ रहा है? असली रोल क्या है? घर जाकर के तो मुझे कार्य करने, अपने 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 परिवार के लिए, अपने स्वामी के लिए। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। आप प्रथम स्कंद के पहले श्लोक को ही देखेंगे, इतनी सारी शिक्षाएं उससे। ये जो हमारी जगत की दृष्टि है ना, जगत के हम हैं, ये जगत शाश्वत है, ये जगत सत्य है, ये सब सब एकदम चेंज हो जाता है। इसीलिए सृष्टि तत्व को समझना चाहिए। बाद में नोट कर लीजिएगा, बाद में लास्ट क्वेश्चन देता हूं। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये तो मेरे लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन। पूरा विश्व भी एक क्षण के लिए है। ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु ऐसे है शाश्वत में, और हम हंस तो बहुत रहे हैं, बहुत दांत दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम मानते हैं अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी इस प्रकार से? अरे इतनी लंबी जिंदगी है, टाइम नहीं पास हो रहा है, मूंगफली लाओ कि नहीं महाराज बोलते, अरे ऐसे लग रहा है मूंगफली समय रुक गया है, मूंगफली खाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा। सोचते हैं हमें बहुत समय भजन करने के लिए, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमारा जीवन खट से निकल जाएगा। जो भी है प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है, और हम लोग क्या हैं? शाश्वत हैं, तो हमें शाश्वत स्थान की ओर प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में ये आप, अब मैं सब आपको लगता है मैं सब बातें क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूं। भगवत गीता भागवतम को बार बार आप श्रवण करते रहेंगे तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। इस जगत में हम लोग क्या सोचते रहते हैं? सही गलत, सही गलत, सही गलत, और कुछ नहीं सोचते। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, जबकि पूरा जगत ही गलत है। सही केवल ये है कि जितने समय हम यहाँ पे हैं, जिस शरीर में, कृष्ण की अधिक से अधिक भक्ति कर सके, ये सीधी बात। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है, इसीलिए भगवान को परम सत्य कहा जाता है। वह किसी पे आश्रित नहीं है और उन पे हर व्यक्ति आश्रित है। अन्य भगवत स्वरूपों की भगवत्ता भी भगवान की भगवत्ता पे आश्रित है, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा गया। तो इसलिए भगवान को परम सत्य कहा जाता है, यानी कि वो सभी के स्रोत हैं। प्रभु जी आप इसे पढ़ाना चालू कर दे रहे। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। समझ में आया? ये बहुत इजी है, पहले जब पढ़ चुके होंगे समझते हैं कि भाई जो सूर्य की रोशनी का विश्लेषण कर रहा है, सूर्य के गोले का विश्लेषण कर रहा है, जो सूर्य के अंदर प्रवेश कर गया वो दोनों को समझ रहा है, सूर्य के गोले को भी समझ रहा है, सूर्य की रोशनी को भी समझ रहा है। तो जो भगवत अनुभूति कर लेता है वह है ब्रह्मानुभूति, और परमात्मा की अनुभूति अपनी आप ही हो जाती है, स्पष्ट है, दिक्कत नहीं। यद्यपि ऊपर से भगवान जीव प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म, वेरी नाइस, अन्वय व्यतिरेक ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। ये तो बहुत सुंदर है कि प्रभुपाद जी मुझे एकदम प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पे ले आते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ भगवान की, भगवान सभी कुछ के रूप में है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है, यही सब हम सीखेंगे। अन्वय व्यतिरेक, सब कुछ भगवान से आया है, भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न एक दृष्टि से, लेकिन हर वस्तु भगवान नहीं है। भगवान अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं, सच्चिदानंद रहते हैं, वे जगत से अलग है, लेकिन जगत क्योंकि भगवान की शक्ति से आया है इसलिए भगवान से अभिन्न है। ये सब बातें अभी आप कल से सुनना जरूर, खूब सुनेंगे, 12 दिन तक ये सुनना है, आप तैयार रहिएगा, 12 दिन लगेगा पहले श्लोक में, उम्मीद करता है, वो भी तब जब मैं 6 अर्थ नहीं ले रहा हूं, केवल एक ही अर्थ ले रहा हूं। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है, समझ में आ रहा है? भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत भेदाभेद, यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। मतलब जो भगवान की शक्ति है उसको आप भगवान से अलग नहीं कर सकते, जैसे अग्नि से ताप को अलग कर सकते हैं, लेकिन ताप अग्नि है, अब समझ में आया आपको, कहां ताप है कहां अग्नि ये भी नहीं कह सकते, अग्नि से ताप बिल्कुल मिला जुला है। तो इसी प्रकार से भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो भगवान के से बिल्कुल भगवान ही है, लेकिन फिर भी भगवान पे आश्रित है, उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन जो भगवान की बहिरंग शक्ति है भगवान से पे आश्रित है, लेकिन भगवान से भेद है, क्योंकि वह भौतिक होती, जड़ होती, ये सब बातें हम सीखेंगे आगे। तो यहां बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अचिंत भेद भेद तत्व है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है भौतिक बुद्धि से, शास्त्र की दृष्टि से हम समझ पाते हैं। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, सब जानते हैं इस बात। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, सब बातें आप समझते हो, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा, जिन्होंने पहले क्लास सुन चुके हुए वो सब जानते हैं इस बात को। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, तटस्था मतलब तट पे स्थित, वो कृष्ण का स्वीकार कर सकते हैं या माया को स्वीकार कर सकते हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति या परा से होता है। समझ में आ रहा है? एक तरफ अपरा शक्ति यानी भौतिक शक्ति और एक तरफ परा शक्ति, तो हमारी इच्छा है कि हम किधर शरण लेते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, और वह स्वतंत्रता है कि वह कृष्ण की सेवा करे या माया की करे। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है, इस प्रकार वह हलादनी शक्ति को अपनी अपनी समान दिशा को प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, और अंतरंगा शक्ति का सार क्या है? हलादनी शक्ति, आनंद देने वाली, श्रीमती राधा रानी। तो जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, और इसी कारण से हम अब अपनी वापस अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त होते जा रहे हैं। जो सुख मिलता है भक्ति का वो क्यों होता है? क्योंकि हम अंतरंग शक्ति की वृत्ति को से संपर्क में आ रहे हैं। आप देखेंगे बहुत बार भगवद गीता का प्रवचन समझ में ना आए लेकिन अच्छा लगता है, और दुनिया के प्रवचन अच्छे समझ में भी आए लेकिन एक्चुअली अच्छे नहीं लगते, हृदय को सुख देने वाले नहीं होते। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ ना भी पता हो लेकिन लोग नाचते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि भगवान की शक्ति, जो भगवान की भक्ति है, वह भगवान श्रीमती राधा रानी जो भगवान की राधनी शक्ति है, उनके संपर्क में जीव आ रहा है। तो अब यहाँ पे बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये जो हिलादनी शक्ति है, when it is bestowed upon a living entity, then it is called love of God। जब ये हिलादनी शक्ति की वृत्ति, हिलादनी शक्ति का शक्तिपात कह लीजिए, या हिलादनी शक्ति को किसी जीव पे दिया जाता है, bestowed का मतलब उस पे दिया जाता है, तो उसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। ऐसे कृष्ण प्रेम के प्रति कृष्ण आकर्षित होते हैं, भौतिक वस्तु के प्रति भगवान कभी आकर्षित नहीं होते। समझ में आ रही बात? चैतन्य चरितामृत पढ़ने का अवकाश तो हमारे पास नहीं है, इसलिए बात समझाई जा रही थी कि जब हलाद्री शक्ति कृष्ण को कोई भौतिक शक्ति आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन जब जीव भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, वह हलादिनी शक्ति को उसके हृदय में स्थानांतरित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो उसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। समझ में आ रहा है? आज क्या बना था ब्रेकफास्ट में, इतना समझ में आ रहा है? वह बना था कड़ी नहीं बनी, इतना तो याद है ना। अच्छा अभी बताइए कि कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं। अरे समझ में आ गया, वेरी गुड, ये आपके पोहे का कमाल है प्रभु जी। इज अ फैक्ट, जब हम जीव से हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब बातें समझ में आती है। यहाँ भी हम भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। हिलादिनी शक्ति, हम बोल के यहाँ पे खत्म करेंगे। हिलादिनी शक्ति जब जीव के हृदय में दी जाती है भगवान की कृपा से, जो भक्ति करता रहता है, तो वह कृष्ण प्रेम कहलाता है। तो यही कह रहे हैं कि वह उसकी सामान्य दशा को प्राप्त होता है, अर्थात भगवत प्रेम की दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत जय हो भगवान की, भगवान की कृपा से। कितना 1.5 साल लग गया हम लोगों को, हमारा भक्ति शास्त्री का पहला बुक खत्म करने में 1.5 साल, और भक्ति वैभव करने में कब पूर्ण होगा पता नहीं है, लेकिन वो उत्साह है कि श्रीमद् भागवतम को शुरू कर पाएंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे देख लेता हूँ किस वक्त का है क्या।